हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। इतने सालों तक अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर उन्होंने एक वनवास काटा था। तब अमन घबरा गया और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपनी तारा को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं अपनी तारा को किसी भी तरह का धोखा दूं। आप सही कह रही हैं, ज़रूर किसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। मैं इस बात का पूरा पता लगाऊंगा। और आप नहीं जानते आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं आज सब कुछ खो चुका होता। फिलहाल तारा कहाँ है? मैं तारा से मिलना चाहता हूँ और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी कोई गलती नहीं है। तभी करिश्मा जी ने अमन को शांत करते हुए कहा, शांत हो जा बेटा, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तारा बहू अभी अपने कमरे में है, वो बाहर नहीं आई है और उसे कल रात के बारे में कुछ नहीं पता है। हमने उस वक्त उसे परेशान नहीं किया। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, अमन ने राहत की सांस ली। अगर कल रात को आप लोग उस क्लब में नहीं होते तो न जाने क्या क्या हो जाता। मैं अभी अपने कमरे में जाकर तारा से मिलकर आता हूँ। उसके बाद मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि आखिरकार किसने मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की है। ये सोचकर अमन जल्दी ही अपने कमरे की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी निगाह बिस्तर पर गई, लेकिन बिस्तर खाली था। तारा वहां नहीं थी। अमन की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने जल्दी से बाथरूम में और हर जगह तारा को ढूंढा, लेकिन तारा का कोई पता नहीं चला। अब अमन को तारा को लेकर डर लगने लगा था। वो सोचने लगा कि कहीं उसके तारा को कुछ हो तो नहीं गया है या किसी ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया है। सबसे पहले अमन के मन में अक्षत का ही ख्याल आ रहा। ये सोचते हुए अमन गुस्से से भर उठा और तारा को ढूंढने के लिए नीचे जाने लगा। वहीं दूसरी ओर तारा परी सोनल परी को लेकर उन असुरों के ठिकाने पर पहुंच चुकी थी। तारा परी ने देखा कि उन असुरों का ठिकाना गहरे नीले पानी के ठीक नीचे था। तारा परी जल्दी ही सोनल परी के साथ वहां पहुंच गई थी। वहां जाकर उसने आसपास देखना शुरू कर दिया। तारा परी ने देखा कि वो तीनों असुर गहरे नीले पानी के ठीक नीचे बने हुए एक असुर महल में रहते थे। वो महल पूरी तरह से काले रंग का था। तारा परी को वहां जाते ही नकारात्मकता का एहसास हुआ, लेकिन उसने उस वक्त अपनी बात सोनल परी को नहीं बताई। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने सोनल परी को इस बारे में बताया तो सोनल परी को डर लग सकता था, क्योंकि सोनल परी तारा परी के जितनी मजबूत और हिम्मत वाली नहीं थी। तारा परी ने अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबा लिया और वो देखना चाहती थी कि आखिरकार ऐसी क्या नकारात्मकता थी जो उसे इतनी बुरी तरह से इस जगह से महसूस हो रही थी। धीरे धीरे सोनल परी और तारा परी दोनों आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रही थी, उन्हें वो रास्ता और भी भयानक नजर आने लगा। चारों तरफ सरकटी हुई खोपड़ियां टंगी हुई थीं। इतना ही नहीं, कहीं कहीं पर कंकाल भी टंगे हुए थे। सोनल परी ये देखकर काफी डर गई थी, लेकिन तारा परी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हें इस तरह से घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इस तरह से डरोगी या घबराओगी तो असुरों की शक्तियां बढ़ सकती हैं, और मैं तुम्हें अभी भी मौका देती हूँ। तुम अभी भी चाहो तो परीलोक को वापस लौट सकती हो। तभी सोनल परी ने अपना इरादा मजबूत करते हुए कहा, नहीं नहीं तारा, मुझसे गलती हो गई। मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी और मैं तुम्हारा कदम से कदम मिलाकर साथ देना चाहती हूँ। तुम बस चलो, आज हम उन राक्षसों को नहीं छोड़ेंगे। सोनल परी ने अपना इरादा मजबूत किया और तारा परी के साथ आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे जैसे ही वे आगे जा रही थी, उन्होंने देखा कि वो जगह बहुत ही ज्यादा भयानक थी, लेकिन तारा परी और सोनल परी उस जगह को देखकर अब बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। दोनों के मन में एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास था कि उन्हें यहाँ से रानी माँ की छड़ी और रेत परी का बचा हुआ आधा हिस्सा लेकर जाना है। जैसे ही वे लोग आगे बढ़े, अचानक उन्हें कुछ आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उन असुरों की ही थी। वो तीनों असुर एक साथ हंस रहे थे, क्योंकि उन तीनों असुरों ने तारा परी और सोनल परी को देख लिया था। तारा परी बड़े ही ध्यान से चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख रही थी। उन्हें असुरों की आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन वे असुर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी तारा परी ने बड़े ही ध्यान से सुनना शुरू कर दिया कि आखिरकार वे असुर क्या कह रहे थे, क्योंकि वे असुर उस वक्त अपनी ही भाषा में बात कर रहे थे। लेकिन अब तारा परी ने उस राक्षस जो असुरों का सरदार था
और जिसमें सबसे ज्यादा शक्तियां थीं से शक्तियां प्राप्त कर ली थीं, जिसकी बदौलत अब उसे उन असुरों की एक एक बात समझ में आ रही थी। उनमें से एक असुर कह रहा था, हमने तो सोचा था कि रानी माँ हमसे झगड़ा करेगी और अपनी फौज को लेकर हमसे यहाँ पर झगड़ा करने के लिए आ जाएगी, अपनी जादुई छड़ी को छुड़ाने के लिए। लेकिन ये क्या, उसने तो एक नहीं बल्कि दो बला की खूबसूरत परियां हमारे पास भेज दी हैं। और ये परी तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत परी तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। तब दूसरा असुर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा और यही बात सोचते हुए तीनों असुर पूरी तरह से हंसने लगे। तारा परी उनकी बातों का मतलब अच्छी तरह से समझ गई थी। वो थोड़ी सी तेज आवाज में बोली, कौन हो तुम लोग, अभी और इसी वक्त मेरी आंखों के सामने आओ। जैसे ही तारापरी ने ये कहा, वे असुर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जल्दी ही तारापरी और सोनलपरी के सामने वे तीनों असुर आकर खड़े हो गए। तारापरी ने उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। तीनों ही असुर बड़े ही भयानक शक्ल वाले थे, मोटा सा पेट, भयानक चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे नुकीले दांत, एकदम काला जिस्म और बड़ा ही लंबा कद, जो अपने आप में ही उन्हें बहुत ज्यादा भयानक बना रहा था। सोनलपरी उन असुरों को इतने करीब से देखकर बहुत ज्यादा डर गई और कांपते हुए उसने तारापरी का हाथ पकड़ लिया। तारापरी सोनलपरी को सांत्वना देने लगी और कहने लगी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी उनमें से एक असुर ने तारापरी की ओर देखते हुए कहा, हम तुम्हारी रानी माँ से बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, हमने उन्हें कहा था कि हर रात हमें एक नई परी चाहिए, लेकिन तुम दोनों की खूबसूरती को देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोगों को कोई नई परी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। आज के बाद तुम दोनों ही हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए रहोगी। तुम चाहो तो वो जादुई छड़ी ले जा सकती हो, लेकिन हमें खुश करने के बाद। तारापरी उनकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से से भर उठी और फिर चिल्लाते हुए बोली, सबसे पहले ये बताओ, रीत परी का धड़ कहाँ है? जैसे ही उन राक्षसों ने तारापरी के मुंह से ये सुना कि वो उनकी मरी हुई परी के धड़ के बारे में बात कर रही है, तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो रीत परी के धड़ को छुपा दिया था और किसी को भी इसके बारे में पता ना चले, इसीलिए जादुई शक्ति के कवच से उन्होंने उसके चारों ओर सुगंधित फूलों की खुशबू फैला दी थी और रीत परी के धड़ को अदृश्य कर दिया था। तो फिर इस परी को कैसे पता चला कि रीत परी का बचा हुआ धड़ उनके पास है? तभी एक राक्षस हैरान होते हुए कहने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी एक परी का धड़ हमारे पास है? तभी तारा परी उसको केवल घूर कर रह गई और कहने लगी, मैं यहाँ तुम लोगों को ये बताने के लिए नहीं आई हूँ कि मुझे ये सब कैसे पता चला। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मुझे अभी और इसी वक्त रानी माँ की छड़ी और रीत परी का धड़ चाहिए।
जैसे ही तारापरी ने ये कहा, वे तीनों असुर जोरों से हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हें देखकर तो हमारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, ऊपर से तुम्हारी हिम्मत हमें तुम्हारा और भी दीवाना बना रही है। ऐसा कहकर वो असुर तारापरी के बिल्कुल ठीक सामने आकर खड़ा हो गया और थोड़ी सी दूरी से बुरी तरह से तारापरी को सूंघने लगा। उस असुर की ये हरकत देखकर तारापरी का दिल नफरत से भर उठा। तभी दूसरा असुर सोनलपरी के ठीक सामने आ गया और तीसरा असुर भी उन्हीं के साथ आकर खड़ा हो गया। वे बड़ी ही हवस भरी नजरों से कभी तारापरी को देख रहे थे तो कभी सोनलपरी को। तभी तारापरी ने उन लोगों से कहा, मैं तुम लोगों को आखिरी मौका देती हूँ, मुझे अभी और इसी वक्त रानी माँ की जादुई छड़ी और साथ ही साथ रीत परी का धड़ चाहिए। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगी तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। जैसे ही तारापरी ने ये कहा, वे असुर तारापरी के बेहद करीब आकर जोरों से हंसने लगे। तारापरी को उनसे बहुत ज्यादा घृणा हो रही थी, लेकिन तारापरी ने देखा कि अचानक उन लोगों के बड़े बड़े कद छोटे होने लगे। वो हैरान हो गईं और जल्दी जल्दी तारापरी के ठीक बराबर में आकर खड़े होकर कहने लगे, देखा, हमने अपने लंबे बड़े कद को तुम्हारे जितना छोटा कर लिया है। अब हम लोगों के मिलन में कोई भी रुकावट नहीं होगी, और ना तो हमारा लंबा कद और ना ही हमारी शक्तियाँ। ऐसा कहकर जैसे ही एक राक्षस ने अपना हाथ तारापरी को छूने के लिए आगे बढ़ाया, तारापरी ने तुरंत उसके हाथ पर अपना एक हाथ तिरछा कर जोरों से मार दिया, जिससे उस राक्षस को काफी ज्यादा दर्द का एहसास हुआ। लेकिन उसने अपने दर्द को अपनी जुबान पर नहीं ला पाया, क्योंकि उसके बाकी के दो साथी उसे ही देख रहे थे। तब उनमें से एक राक्षस बोला, हे नासमझ परी, क्या तुझे पता नहीं है कि हमें असुरों को तुम्हारे ये मासूम और मुलायम हाथ कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो तुम क्यों अपनी शक्तियां वेस्ट कर रही हो? जैसे ही एक असुर ने ये कहा, दूसरा असुर हंसने लगा, जबकि तारापरी ने जिस असुर के हाथ पर मारा था उसकी मुस्कुराहट बाहर नहीं निकली थी, और वो भी उन लोगों की झूठी हंसी में हाँ में हाँ मिलाकर कहने लगा, हाँ हाँ, तुम्हारे इस तरह से मारने का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है। जैसे ही उसने इस तरह से कहा, तारापरी मन ही मन हंस पड़ी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसे कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा।
तभी एक और असुर आगे बढ़ा और अचानक से तारापरी को छूने के लिए जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, तारापरी ने खींचकर एक जोरदार वार उसके हाथ पर भी कर दिया और उसकी हड्डियां तक टूट गईं। लेकिन वो भी पहले वाले असुर की तरह झूठी मुस्कुराहट लेकर उसकी ओर देखने लगा और दर्द ना होने का दावा करने लगा। अब केवल एक असुर बचा था और जैसे ही वो आगे आया वो कहने लगा, अगर तुझे मुझे भी मारना है तो मार ले, मुझे पता है कि तेरे मारने का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। ऐसा कहकर जैसे ही वो तारापरी को छूने के लिए आगे बढ़ा, तारापरी ने उसे जोरदार एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, क्योंकि अब उन लोगों के मुंह पर हमला करना काफी आसान था क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने कद काफी छोटे कर लिए थे। जैसे ही तारापरी ने उसे मारा, उसके मुंह से काला काला खून निकलने लगा और तब जाकर वो जोरों से चिल्लाया कि मुझे दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये कोई आम परी नहीं है। ऐसा कहकर तीनों असुर एक्टिव हो गए और जब पहले वाले ने भी कहा, जब उसने मुझे मारा था मुझे भी दर्द हुआ था, दूसरा भी बोला, हाँ मुझे भी दर्द हुआ था। तो इसी बीच वे तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, जबकि सोनल परी जोरों से हंसने लगी। सोनल परी के हंसने से ऐसा लगने लगा जैसे चारों तरफ फूल बिखर गए हों, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत सा हो गया हो। वे तीनों असुर भी उसकी हंसी में खो गए थे। तभी अचानक सोनल परी ने हंसना बंद करके अपनी जादुई छड़ी निकालकर उन लोगों पर अपनी करंट वाली शक्ति का इस्तेमाल कर दिया। क्या तारापरी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या अमन सच जान पाएगा? क्या वो तारापरी का पता लगा पाएगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।